नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच सरकार गठन को लेकर जारी बातचीत आखिरकार रंग लाई और दोनों दलों के बीच नई गठबंधन सरकार बनाने को लेकर समझौता हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने मंगलवार देर रात एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। वहीं पीपीपी के सह अध्यक्ष आसिफ जरदारी दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बनेंगे। बिलावल ने संवाददाताओं से कहा, पीपीपी और पीएमएलएन के पास पर्याप्त संख्या बल है और अब हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समर्थित उम्मीदवार और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केंद्र में सरकार बनाने के लिए संसद में बहुमत हासिल नहीं कर सके। इस दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पीपीपी के साथ सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी पीएमएलएन के पास अब आवश्यक संख्या बल है। साथ ही उन्होंने वार्ता के सकारात्मक निष्कर्ष के लिए दोनों दलों के नेतृत्व को धन्यवाद दिया। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री खान की पार्टी पीटीआई ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पीपीपी और पीएमएलएन गठबंधन पर निशाना साधा है। अमेरिका के इलिनॉयस प्रांत के सबसे बड़े शहर शिकागो की प्रतिष्ठित पत्रिका शिकागो मैगजीन में भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को 50 सबसे अधिक प्रभावशाली शिकागो वासियों की सूची में शामिल किया गया है। कृष्णमूर्ति को इस सूची में 24वां स्थान दिया गया और इसी के साथ ही वो सर्वोच्च रैंक हासिल करने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इस सूची में इलिनॉयस के गवर्नर जे बी प्रिट्जकर का नाम शीर्ष पर है और दूसरे नंबर पर है शिकागो के मेयर ब्रेडन जॉनसन का नाम। शिकागो मैगजीन ने कृष्णमूर्ति को सूची में 24वें स्थान पर रखते हुए उन्हें ग्रेटर शिकागो क्षेत्र में दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है। पत्रिका में यह भी कहा गया है कि वो वर्ष 2026 में अमेरिकी संसद के चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति देश में विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए बनी हाउस ओवरसाइट उप समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहा जाता है कि उनकी प्रचार निधि में 1.44 करोड़ अमेरिकी डॉलर हैं, जो कि इलिनॉयस के किसी कांग्रेस प्रतिनिधि की तुलना में 3 गुना से अधिक हैं। एक राजनीतिक सलाहकार ने कहा, राजा बेहद प्रभावशाली हैं। पत्रिका में कहा गया, कृष्णमूर्ति ने वर्ष 2022 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों और डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल कैंपेन कमेटी को 4,60,000 अमेरिकी डॉलर का दान दिया था। कहा जाता है कि वो 2026 के चुनाव लड़ने के लिए प्रचार निधि में राशि जमा कर रहे हैं। यूके सरकार ने इंग्लैंड के सभी स्कूलों को स्कूल के घंटों के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर बैन लागू करने की सलाह देते हुए कड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा सचिव गिलियन कीगन ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य छात्रों के अत्यधिक फोन इस्तेमाल को कम करना है। यूनाइटेड किंगडम के अलावा कई अन्य यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, इटली और पुर्तगाल में भी स्कूलों में मोबाइल फोन को बैन कर दिया गया है। नए दिशा निर्देश के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल इन कानून के जरिए पूरी तरह से बैन लगाए बिना स्कूलों के अंदर मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित करने की आज़ादी देते हैं। सरकार के सुझाए गए तरीकों में स्कूल के भीतर फोन पर पूर्ण प्रतिबंध, स्कूल के घंटों के दौरान फोन जमा करना या फोन रखने के लिए खास लॉकर बनाना शामिल है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल जैसे साइबर बुलिंग, पढ़ाई में रुकावट और सीखने के समय का नुकसान पर चिंताएं उठाई हैं। ऑफकॉम के आंकड़ों के मुताबिक 97% बच्चों के पास 12 साल की उम्र तक मोबाइल फोन होता है। यूके के शिक्षा सचिव गिलियन कीगन ने बीबीसी से कहा, आप सीखने, दोस्ती विकसित करने, साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए स्कूल जाते हैं, न कि लगातार अपने फोन पर स्क्रॉल करने के लिए। एक तरफ जहां एसोसिएशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लीडर्स के नेता इसे गैर मौजूद समस्या का गैर जरूरी समाधान बताते हैं, वहीं कुछ प्रधानाध्यापकों ने इसका स्वागत किया है। एसेक्स के पासमोर्स अकादमी के प्रधानाध्यापक विक गोगार्ड ने कहा, स्कूल सभी छात्रों के फायदे के लिए इस नीति में बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर छात्रों के फोन के इस्तेमाल को बैन करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह करने वाले माता पिता, वकीलों और डिजिटल सेफ्टी ग्रुप्स की बढ़ती कॉल के बीच ये निर्देश आए हैं। यूके सरकार का तर्क है कि फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने से एकाग्रता, शारीरिक गतिविधि और एक दूसरे के बीच बातचीत बढ़ सकती है। कई माता पिताओं ने हाल ही में टेक कंपनियों और स्कूलों से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन की रीच को सीमित करने का अनुरोध किया, जिसे बाल आयुक्त राचेल डी सूजा ने जोरदार समर्थन दिया। हालांकि सरकार स्पेशलाइज्ड अंडर 16 मोबाइल फोन को आगे नहीं बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। सुनक ने एक प्रेस ब्रीफिंग में टिप्पणी की, ऑनलाइन युवाओं की सुरक्षा करना हमेशा हमारी प्राथमिकता होगी। मेरी सरकार टेक कंपनियों के साथ बात कर रही है और बच्चों के लिए नुकसानदायक सामग्री तक पहुँच को प्रतिबंधित करने वाले सभी तरीकों पर विचार कर रही है। अंतरिक्ष में रूस की परमाणु हथियार रखने की प्लानिंग, इस मुद्दे पर अभी वैधानिक कानून नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि स्पष्ट दिशा निर्देश देश भर में जल्द बनाए जाएंगे। ये नियम टीचर्स को गैजेट जब्त करने और इसके खिलाफ स्कूलों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार भी देते हैं। यूके सरकार का तर्क है कि फोन के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने से एकाग्रता, शारीरिक गतिविधि और आमने सामने बातचीत बढ़ सकती है। माता पिता को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें स्कूल के समय के दौरान अपने बच्चे से संपर्क करने की आवश्यकता हो तो वो उनके फ़ोन का उपयोग करने के बजाय सीधे स्कूल से संपर्क करें। दिशा निर्देश घर पर अपने बच्चों के साथ फ़ोन के उपयोग और इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित नियमों पर चर्चा करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।